दांत तीखे एवं दाढ़ी एवं बाल तांबे जैसे थे और वे सब अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहे थे। वे उस स्वर से इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसे छेद डालो, चौपे, इस तरह चिल्लाकर बलराम महाराज पर जो शांत भाव से भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे प्रहार कर रहे थे। 5 वर्ष का बच्चा सोचिए आराम से वो बैठा है, भगवान का स्मरण कर रहा है और ऐसे खूंखार राक्षस हाथ में त्रिशूल लेकर उसके उमाश्री पर आक्रमण कर रहे हैं और जोर से चिल्ला रहे, मारो मारो खत्म कर दो इसको। और प्रहलाद बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, छोटे बच्चों और उनको कुछ भी चीज देखने के लिए डर जाते हैं। छोटे बच्चे पहले वाले किसी को देखता है तो ऐसे रोना शुरू कर देता है, खूंखार इतना खूंखार, तांबे जैसे उनके बाल दाढ़ी नुकीले दांत हाथ में त्रिशूल और जोरों से चिल्ला रहे हैं और प्रहलाद चुपचाप शर्म आ रहे हैं, है ना। ऐसा कैसे संभव होता तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि उन राक्षसों के जो हथियार थे प्रहलाद पर बिल्कुल भी असर नहीं किया। जैसे कि एक व्यक्ति के पास कोई पुण्य कर्मों की पूंजी है ही नहीं, वो जितना मर्जी यज्ञ और तपस्या कर ले उसको यज्ञ तपस्या का फल मिलता ही नहीं। पापी व्यक्ति जितना मर्जी यज्ञ कर ले उसे जो कोई फल नहीं मिलेगा। कल ही हम यहाँ पे गए थे मियावाड़ी नगर में, पास में जगह थी, वहाँ 8 करोड़ रुपए का यज्ञ कर रहे हैं कोई महाराज जी है भ्रष्टाचार के विरोध में। और 8 करोड़ रुपए कैसे किसने दिए होंगे भ्रष्टाचार करके 8 करोड़ रुपए इकट्ठे किए होंगे, भ्रष्टाचार के विरोध में वो यज्ञ कर रहे हैं। तो कोई फल होगा? कोई नहीं होगा। इससे पहले कई साल पहले उस स्थान पर धन ऋषि यज्ञ किया था कि धन की वर्षा हो, और जितने वैश्य उन्होंने खूब खूब धन दिया था, पता नहीं धन की वर्षा कहाँ होगी। तो यज्ञ और तपस्या का ऐसे लोग जिनके पुण्य की पूंजी नहीं है कोई असर नहीं होगा। उसी प्रकार से जैसे यज्ञों कोई असर नहीं होगा, उसी प्रकार से जो राक्षस कर्म थे इतने बड़े बड़े हथियारों से कोमल बच्चे पर प्रहार कर रहे थे, कुछ असर ही नहीं हुआ। छोटे बच्चे कोई डॉक्टर सुई लगाते हैं कितना जोर से लगाते हैं, बड़ा आदमी तो जानता है कि मेरे भले के लिए सुई लगाना है, वो उसको पैसे भी देते हैं 500 रुपए किलो सुई लगाने के, लेकिन छोटा बच्चा उसको मारता है रोता है क्यों सुई लगा रहे। लेकिन यहाँ सुई बड़े बड़े त्रिशूलों से उसका प्रहार हुआ, यहाँ पे कोई असर नहीं, कितनी बड़ी बात है। श्रीला प्रभुपाद ये बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, प्रहलाद महाराज भगवान के विचार में निरंतर पूर्णतया मग्न थे, ये कारण था। He was constantly and fully engaged, निरंतर और पूर्ण रूप से भगवान के विचारों में मग्न थे, पता ही नहीं चला उनको क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात बिल्कुल पता ही नहीं चला क्या प्रहार हो रहा है, कोई मालूम नहीं चला। बड़े युक्त आत्मनी पूर्णतया और मग्न थे, इसलिए भगवान की रक्षा की। यहाँ प्रभुपाद शब्द कह रहे हैं गोविंद बलराम विद्या, जो कि पिछले 4वें अध्याय के 28वें श्लोक में शब्द आता है गोविंद बलराम विद्या, यानी कि जैसे भगवान ने उनको गले रखा हो, जैसे एक छोटा बच्चा मां से आलिंगन करके चिपका रहता है बिल्कुल शांत, उसको मालूम नहीं, उसको चिंता नहीं करनी पड़ती कि सर्दी बढ़ गई है माँ को ज्यादा कंबल डालने पड़ेंगे, गर्मी बढ़ गई है कपड़े उतारने पड़ेंगे, कब खिलाना है कब उसका मलमूत्र साफ करना है, उसको कुछ नहीं मालूम, पूर्ण रूप से अपने माँ पर निर्भर है। उसी ढंग से गोविंद बलराम था, वो इतना पूर्ण रूप से भगवान में मग्न थे जैसे भगवान उनका आलिंगन किया हुआ है। तो भगवान ने आलिंगन किया हुआ है और भगवान परे ब्रह्म ने अर्ध निर्देश अखिलात्मना तीन सब भगवान के योजना श्लोक में, परे ब्रह्म संसार के नहीं पूर्ण रूप से दिव्य है, अनिर्देशित जिनको कोई देख नहीं सकता, और अखिल आत्मा सब जीवात्माओं की आत्मा है और यहाँ तक कि जो त्रिशूलों से आक्रमण हो रहा है उनकी भी वो आत्मा है, उनके भी प्राण है। तो कैसे असर हो सकता है जब भगवान ने स्वयं उनको आलिंगन कर रखा है। तो इस ढंग से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आप एक प्रश्न पूछते हैं, अगर समझिए छोटे बालक पे इतने आक्रमण हो रहे हैं और पहला जिस समय प्राण त्याग देते तो भी क्या गति होती, पूर्ण रूप से भगवान के विचारों में मग्न है, राक्षसों ने उनको बहा किया और प्रहलाद ने प्राण त्याग दिए तो भी क्या गति होती, तो फिर भगवान की रक्षा क्यों की,
परीक्षण जो करते हैं
कैलाश महाराज के लिए ये अच्छा स्थान था कि भगवान का धाम अच्छा स्थान था, यहाँ पर इतने कष्ट मिल रहे हैं उनको, और फिर सीधे उसको ठीक है हमने धाम ले लिया, भगवान तो बहुत आतुर रहते हैं हमने भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए। इसी वजह से हम देखते हैं दुर्योधन और उनके भाइयों ने पांडवों को कितना धन किया, उनको विष खिलाया, उनको लक्षण ग्रहण उनका आग लगा दी और तरह तरह से उनको मारने का प्रयास किया। हर भाई भगवान को बचा लेते थे, अरे बचा तो लेते रक्षा कर लेते, लेकिन कितनी दुर्दशा थी बचा लेते 13 साल तक ऐसे भटकते थे बनो थे जैया तुमको अपने साथ चलो आप जैसे लोगों के यहाँ गति नहीं है जैसे किसी नॉट बेस वाला जेंटलमैन यहाँ अच्छे लोगों की जगह ही नहीं रहने की चलो साथ में ले जाते। पर ऐसा भी नहीं कि प्रहलाद सारे प्रहलाद कह रहा था कि मुझे यही रहना है या पांडव कह रहे नहीं हम तो राजा बन के दिखाएंगे, वो बिल्कुल ठीक है ऐसे ले जाते साथ में, क्यों नहीं कर रहे भगवान क्यों रक्षा कर रहे होंगे। उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की, प्रहलाद ने प्रार्थना थोड़ी की कि भगवान मेरी रक्षा करें, ऐसा भगवान अपने भक्तों की रक्षा क्यों करते हैं। भगवान भक्तों की रक्षा भक्तों के लिए नहीं करते, भक्त जिए हमारे एक समान है। तो हमारे कथा सुनाते हैं ना, एक राजकुमार मिला एक ब्राह्मण को, गुरु जी को साधन के चेले थे, क्या आशीर्वाद दिया था उस राजकुमार को, कभी ना मरो, ब्रह्मचारी मिला तुरंत मर जाओ, फिर एक कसाई मिला ना जियो ना मरो, और एक बहुत बड़ा वैष्णव मिला बोलो जियो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो राजकुमार का इतने पाप करता था उसको बोले जीते रहो, मर गया तो बहुत बड़ी हालत होगी, बहुत आपने कुकर्म किए नेतृत्व के लिए सबका फल सहना पड़ेगा। और जो ब्रह्मचारी था बहुत तपस्या की थी उसने, जमीन पे सोता था ठंडे पानी से नहाता था, बहुत कम खाता पीता था, इस काम के ब्रह्मचारी बात नहीं हुई हालत है खून से लपटे हुए आस पास रोने के वाले को जाओ कभी ये हालत होगी ऐसे ही हो, और तो क्या बोला जियो मरो कोई फल कोई अंतर ही नहीं। लेकिन भगवान फिर भी भक्तों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जैसे जीवों में कृपा करेंगे, अगर आप कैलाश महाराज की कथा ना होती तो हम किस पर मान करते, हम कैसे मालूम चलता कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, हमें कैसे मालूम चलता कि भक्ति की कितनी महिमा है। तो हम सबको शिक्षा देने के लिए, हम सबके लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए महाजन है भगवान, हमें धर्म का रास्ता सिखाने के लिए भगवान हम पे कृपा करने के लिए इन भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्त लोग अपने इस शरीर की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करते, उनको क्या है, बल्कि हरिदास ठाकुर जब जो मारा जा रहा था, हरिदास ठाकुर तो जो लोग उनको मार रहे थे उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि इनको राजा इनको मार देगा आप इनकी रक्षा के लिए, प्रार्थना नहीं कर रहे थे। फिर भी भगवान की रक्षा करते हैं ताकि आगे आने वाले जो बच्चे हैं वो उनसे कुछ सीख सके। भगवान तो आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और भक्त लोग अवतरित होते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए, भगवान भक्तों के माध्यम से धर्म का भक्ति का प्रचार करते हैं, इसलिए भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। और कैलाश महाराज तो चूंकि पूर्ण रूप से मग्न थे और साथ में विचलित में नहीं थे, हम भी कई बार जब भगवान खतरे में होते हैं हम भगवान का बहुत नाम लेते हैं। एक हमारे मित्र बता रहे थे कोई वैसे अपने मित्र के साथ गाड़ी में बैठे थे जो बहुत जैसे कहते हैं वीडियो गाड़ी को चलाते ना वीडियो गेम से वैसे गाड़ी चला रहे थे, वो आगे बैठा था तो बोला कि पूरी हालत हो गई कि 1 घंटे में 16 फिर कोई खतरा, हालांकि वो पूर्ण रूप से बंद था भगवान के विचारों में लेकिन बहुत विचलित था कि कभी कुछ हो सकता है। कैलाश महाराज से विचलित नहीं थे, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, क्यों, क्योंकि कैलाश महाराज ने जो भी परिस्थितियां थी वो स्वीकार कर ली, ये भगवान की कृपा है, भगवान का द्वेष स्थिति है। कैलाश महाराज ऐसा नहीं सोच रहे थे कि उन परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते थे और भगवान से से प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकूं, कि मैं कंट्रोलर बन सकूं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम उनको कंट्रोल भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे शक्ति दीजिए मैं उनको कंट्रोल कर सकूं। तो हम क्या करें, भगवान से शक्ति देंगे? निश्चित रूप से नहीं। जैसे द्रौपदी क्या कर रही थी, एक हाथ से उसने अपनी साड़ी को बचा ली थी, दूसरे हाथ से भगवान को भगा रहे थे। भगवान कोई ठीक है बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसने दोनों हाथ ऊपर किए, गोविंद करके बुलाया, भगवान ने तुरंत साड़ी बनकर आए उसकी रक्षा की। इसी ढंग से प्रहलाद महाराज कोई परिस्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर थे और जो परिस्थितियां थी उसको वो भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर रहे थे। नरसिंह पुराण में बताया गया है कि जब प्रहलाद महाराज को विष पिलाया गया तो उनको ऐसा लगा, विष कौन है, मेरे मामा जी है। क्योंकि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी के निकलने से पहले कौन निकले थे, विष हलाल पूरा निकला था, इसको शिव जी ने पिलाया। और फिर हाथी के नीचे पैर लगाया, बोले क्या, ये तो कौन है, गजेंद्र है। सांपों के कुंभ में बड़े कौन है, तो हरण शेष है। और जब पहाड़ से नीचे फेंका गया तो प्रयाग ने हृदय को पकड़ लिया, तो परमात्मा के हृदय नीचे गिर जाए। तो इस ढंग से उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान की उपस्थिति को देखा। हर परिस्थिति में उन्होंने भगवान की उपस्थिति को देखा, इसलिए वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हो गए। ये अर्थयुक्त आत्मा थी। हम लोग विचलित हो जाते हैं, लेकिन ठीक है प्राणी मौसम में विचलित भी हो रहे हैं, तब भी हम भगवान की शरण में रहते हैं। जैसे विदेशों में भक्त लोग प्रचार करने जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं, भारत में तो जाते हैं तो लोग हमारा स्वागत करते हैं, स्टॉल लगा के आगे देखो पानी पिलाते हैं, फूल खिलाते हैं, फल फ्रूट खिलाते हैं। विदेशों में ऐसा नहीं होता, विदेशों में सड़े अंडे मारते हैं, ऊपर से गंदा कचरा फेंक देते हैं, गालियां देते हैं, है ना। और ऐसे ऐसे में कचरे से निकलना पड़ता है, जहाँ आस पास सब बकरे कट रहे हैं, चिकन कट रहे हैं, बद्दू आ रही है, तो सब कुछ सहते हुए निकलते हैं, तो विषय तो हो जाते हैं, हरे नाम की शरण लेते हैं साथ साथ। पानी व्यवस्था तो यह है, लेकिन जब पूर्ण रूप से मन हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर परिस्थिति को वो भगवान की इच्छा के अनुसार ग्रहण करते हैं, ये भी भगवान की विशेष कृपा है। जब भी कोई भक्त भगवान की शरण लेता है और कहता है कि हे कृष्ण, हे राधा रानी का जो, हे कृष्ण बलराम, आज से मैं आपका हूँ, अगर हम हृदय से भगवान को कहते हैं तो निश्चित रूप से भगवान तुरंत हमें स्वीकार करते हैं और हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। और उसी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर हम कुछ भी कर सकते। प्रहलाद महाराज को यही आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त थी, इसलिए वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। हम भी इस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो जीवात्मा का साइज क्या बताया गया है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, इसके अंदर क्या शक्ति आ सकती है। लेकिन यही कुछ जीवात्मा महात्मा बन सकती है, महान आत्मा बन सकती है। कैसे, भगवत में क्या बताया गया, महात्मा जो स्वभाव महात्मा कैसे बन सकते हैं, देवी प्रकृति महाशक्ति, श्रीमती राधा रानी की शरण लेकर। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
राम। दो बात करते हैं, ये हरे कृष्णा महामंत्र की प्रार्थना है हमारी रक्षा के लिए। प्लीज एक्सेप्ट मी इन योर सर्विस, मुझे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए, प्लीज प्रोटेक्ट मी, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, सबसे बड़ी प्रार्थना है। तो जब हम इस ढंग से राधा राधिका मंदिर की शरण लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान रोज जप करके, तो निश्चित रूप से हम भी महात्मा बन जाते हैं, महात्मा बन सकते हैं। और फिर हम हर परिस्थिति का जिस ढंग से तैयार मार्ग में सामना कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे बिल्कुल अकेले थे, जिस ढंग से प्रहलाद महाराज सब असुरों के बीच में बिल्कुल अकेले थे। जब प्रभुपाद बॉम्बे स्ट्रीट में गए, हर तरह के कलियों के एजेंट्स आसुरी लोगों के बीच में प्रभुपाद को रहना पड़ा और तरह तरह से प्रभुपाद को प्रहार कर रहे थे। प्रभुपाद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और जैसे उन सब असलों को जिनसे पहला आज अगले चैप्टर में पढ़े कि जैसे उसने असलों के बालकों को प्रचार किया और उनको भक्त बनाया, इसी ढंग से प्रभुपाद ने कलयुग के सभी एजेंट्स को और सभी आश्रम प्रवर्तन में लोगों को वैष्णव बना दिया। कैसे? एक आध्यात्मिक शक्ति के बल पर। प्रभुपाद ने क्या बोला, मेरे पास किसकी शक्ति है, केवल हरि नाम की शक्ति है। तो इस ढंग से महामानव महापार्थ देवी प्रकृति आश्रय, जब हम भगवान की देवी प्रकृति का आश्रय करते हैं तो निश्चित रूप से हम इस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और किसी परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। ये प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षा से अपने जीवन से हमें सिखा रहे हैं। तो ये जो प्रसंग है अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि कृष्ण अखिलात्मनि है। जो असुर थे वो बहुत निपुण होते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, जितना वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको उतना हानि होता है। और यहाँ जोर से चिल्लाकर बोल रहे हैं मार डालो इसको, खत्म कर दो, और वो बड़े एक्सपर्ट थे, उनके लिए लोगों का सर काटना ऐसे था कोई बड़ी बात नहीं है, घबराएंगे नहीं किसी को मारने में, तो बड़े एक्सपर्ट थे, कुशल थे। उसके बाद ये छोटे से बच्चे को नहीं मार पाए और साथ में उनको किसका सपोर्ट मिल रहा था, सबसे महान असुर वीर कौन थे, और कहा छोटा सा बच्चा उसको भी नहीं मार पा रहे, क्यों? यहां लिखा रहे हैं कि कृष्णा इज द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग इवन द मटेरियल वेपन्स। हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं कि जो कृष्ण है इन हथियारों के भी प्राण है, अखिल आत्मनि। मतलब कि ये जो त्रिशूल थे, नुकीले त्रिशूल भी तभी किसी पे प्रहार कर पाएंगे, तभी किसी पे असर कर पाएंगे अगर कृष्ण की इच्छा हो। कोई भी भौतिक वस्तु प्रभावशाली बन सकती है कृष्ण की इच्छा से, कोई भौतिक वस्तु प्रभावहीन हो जाएगी कृष्ण की इच्छा से। एक ही दवाई है, एक रोगी को ठीक कर देगी, दूसरे रोगी को ठीक नहीं करेगी। भौतिक वस्तु एक ही है, किसी भी प्रभावशाली होगी, किसी भी प्रभावहीन होगी। किसकी इच्छा पर निर्भर है? कृष्ण की इच्छा। तो कृष्ण हर वस्तु के प्राण है, चाहे वो निर्जीव वस्तु भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि निर्जीव वस्तु को हम जैसे मर्जी मैनिपुलेट कर ले वो हमारी सेवा में लगेगी लगेगी। हम उसको सेवा में लगाने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन हमारी सेवा तब करेगी जब कृष्ण की इच्छा हो, क्योंकि कृष्ण उस वस्तु को क्रियाशील बनाते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल है कृष्ण हर वस्तु के। तो त्रिशूल से प्रहलाद महाराज पे आक्रमण किया जा रहा था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कोई उस पे फूल बरसा रहा है, प्रहलाद महाराज को फर्क नहीं पड़ा। इसी ढंग से महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं, युद्ध समाप्त होने पर भगवान रथ से नीचे उतर रहे और कृष्ण अर्जुन को बोला तुरंत रथ से नीचे उतरा। अर्जुन भी तुरंत रथ से नीचे उतरे और जैसे अर्जुन रथ से नीचे उतरा जो रथ था उस पर जोर से धमाका हुआ और रथ जल पड़ा। जब तक मैं इस रथ पे था मैंने इस रथ से अपनी शक्ति से इसकी रक्षा की। अर्जुन ने बोला इसमें तो दुश्मनों ने इतना आक्रमण किया, इतने सारे हथियार छोड़े, तब पे जला लिया, कैसे चल गया? शक्ति से ये बचा हुआ है, इसलिए भगवान किसी भी वस्तु को प्रभावशाली बना सकते हैं या प्रभावहीन बना सकते हैं। युद्ध समाप्त होते ही जब भगवान हस्तिनापुर वापस जा रहे थे, रथ पे बैठने वाले थे कि उत्तरा माता जोर जोर से चिल्लाते हुए कृष्ण कृष्ण महाबाहो कृष्ण कृष्ण महाबाहो के पास आई। उन्होंने बोला कि निश्चित रूप से एक बहुत तेजी से ब्रह्मास्त्र आ रहा है मेरे घर की ओर और मेरे घर में मेरा जो शिशु उसको मार देगा, मैं इस अस्त्र से जल जाऊं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे घर में जो मेरे शिशु उसकी रक्षा करो। तो भागवत में पहले स्कंद के आठवें अध्याय में श्लोक आता है, तो भगवान ने सुना और प्रभुपाद उसके भावानुवाद में लिख रहे हैं कृष्ण पेशेंटली हर्ट। वहां देखिए इमरजेंसी है, कृष्णा माता भाग के आ रही है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा हुआ है, ब्रह्मास्त्र मन की गति से तेज चलता है और इतनी इमरजेंसी है, भगवान ने बहुत ही सब्र से उसको सुना, आराम से तसल्ली से, बोलो क्या प्रॉब्लम। भगवान के हाथ में सब कुछ है, परम शक्तिशाली है, वहां ब्रह्मास्त्र लटका मन की गति से जाओ सुनने दो प्रॉब्लम क्या है। एक्टिव प्रिंसिपल लगा रहे थे, कुछ भी कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अर्जुन ने संकल्प लिया सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का सर काट दूंगा, है ना, अर्जुन ढूंढता रहा जयद्रथ मिले नहीं पाए, भगवान ने क्या किया सूर्यास्त करा दिया, जयद्रथ नाचते हुए आया सूर्यास्त वया लक्ष्य पकड़ के सूर्य से चला चला। भगवान के लक्ष्य में किसी भी चीज को प्रभावशाली बनाते, किसी भी चीज को प्रभावशाली करते, तो ऐसे जो भगवान है वो हमारे सुहृद है, मित्र है, किस बात की हमें चिंता होनी चाहिए। जैसे एक बार उन्होंने चर्चा की थी कृष्णा कॉन्शियसनेस का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, कृष्ण हमसे प्रेम कर रहे हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए, कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। और ऐसे व्यक्ति प्रेम नहीं करते जिनको बेचारे खुद ही कुछ करने लायक ना हो, आप क्या रक्षा करेंगे। सर्वशक्तिशाली कृष्ण किसी भी वस्तु को प्रभावहीन कर दे, किसी भी वस्तु को प्रभावशाली कर दे, कुछ भी कर सकते हैं, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करें। एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग इज कृष्णा, ये हमें इस बात को याद रखना चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं कि क्या कृष्ण केवल महाभागवतों की रक्षा करते हैं या हम जैसे भक्तों की भी रक्षा करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो कई बार हमें डाउट आता है प्रभु जी मैं कोई भक्त तो हुई नहीं। मैं जानता हूँ ईमानदार व्यक्ति बोल रहा हूँ, भक्त कहाँ, भक्त मैं कहाँ हूँ। ठीक है, हम कह सकते हैं पूर्ण से वैष्णव नहीं बने, लेकिन वैष्णव पर आए हैं, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कृष्ण हम जैसे कनिष्ठ अधिकारियों की, क्षमा कीजिए, किसी भी कनिष्ठ अधिकारी की रक्षा करते हैं या केवल महाभारतों की रक्षा करते हैं? क्या अनुभव क्या है आपका, किसी को अनुभव है कि भगवान ने उनकी रक्षा की हो? हमेशा ही रक्षा करते हैं, भगवान तो हमेशा ही रक्षा करते हैं, और हमें पूर्ण रूप से भगवान को ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज की रक्षा कर ली, पांडवों की रक्षा कर ली, मैं किसके थी उन्होंने मुझे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। या किसी घर में समझ लिया आग लग गई और माँ जो है उसे कई बेटे हैं, सबसे पहले वो किस बच्चे को उठाएगी जो पूर्ण रूप से बिल्कुल असहाय है, सबसे पहले उस छोटे शिशु को उठाएगी फिर भागेगी बाहर, क्योंकि बड़े लोग हैं अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो इसी ढंग से भक्ति में भी हम बच्चे हैं, चलना भी सीखे, तो भगवान निश्चित रूप से हमारी रक्षा करते हैं। कई तरीके हैं भगवान की रक्षा करने के लिए, सबसे अच्छा तरीका भगवान रक्षा करते हैं कि हम भक्तों का संग प्रदान करते हैं, भक्तों के संग में हमारी बहुत रक्षा हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था में जब हमने चार लोगों को पालन करना शुरू कर रहे होते हैं, ये भक्तों का संग ही है, भक्तों का जो प्रेशर है वही हमें सारे चार में पालन करवाता है। हमारे तो शौक ये बाहर जाते हैं, चलो ठीक है हरी रात की दुकान में चलो यहाँ कुछ खा लेते हैं, भक्त लोग साथ में होते हैं, नहीं नहीं अभी अच्छा वक्त हो, दोनों का मन कर रहा हो लेकिन कोई बोलेगा नहीं, क्या होता मैं क्यों बोलूँ, इंसल्ट हो गए हम बोलते भी, और फिर कॉम्पिटिशन होता है, अगर वो मगल आती होगी मुझे भी मगल आती होगी, तो इसी में ही भक्तों के प्रेशर में ही चार दिन शुरू हो जाते हैं, साधना शुरू हो जाती है, और वो बैठे जब कर चुप नहीं बैठे जब करता हूँ, एक नकल में भक्तों के पीयर प्रेशर में भक्ति शुरू हो जाती है, और भक्तों का साथ हमेशा बचाता है। कई बार हम इतने तरीके प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, यहाँ चले वहाँ चले, मैं अकेले ये करूँगा ना, छोटे ही भक्त कभी कोई आ जाएगा कभी कोई आ जाएगा, किसी ना किसी ढंग से भगवान भी भगवान के हाथ में, भगवान में सुरक्षित रहते हैं, इसलिए भक्तों के संग में रहना सबसे बड़ी सुरक्षा है, हमेशा भक्तों के संग में रहना, तो निश्चित रूप से भगवान का हमें वो स्मरण कराते रहते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये पता नहीं कौन से युग की कथा है, कौन पिता अपने बच्चे को इस जंग से मरवाएगा, संभव है? यही प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से, कैसे संभव है? इतना क्रूर पिता अपने बालक को इस ढंग से बनाएगा, छोटे से बालक को क्या हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, उसके मन पसंद बात नहीं की, अलग तरीके से समझा लेता, मरवा देगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगा, अनुभव होगा, आजकल भी ऐसा होता है, आजकल भी ऐसा होता है। ऐसे माता पिता है जिनको मालूम चल जाए कि बेटे ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया है, वो पागल हो जाते हैं इसी ढंग से। वही प्रभुपाद के समय से है, जब प्रभुपाद ने अमेरिका में सोसाइटी बनाई तो उस समय एक व्यक्ति होता था टेड पैट्रिक, डी प्रोग्राम वाला, है ना। जो पेरेंट्स होते थे खाली हरे कृष्णा सोसाइटी के नहीं, क्रिश्चियन सोसाइटी हो, इस्लामिक सोसाइटी हो, कोई युवा व्यक्ति अगर किसी धर्मवीर संस्था में जुड़ जाता था तो जो पेरेंट्स से चिंतित हो जाते थे और डेड पैट्रिक को हायर करते थे डी प्रोग्राम पर कि हमारे बच्चे को सही राह पे लाओ, बिगड़ रहा है। वो हजारों डॉलर लेता था उनसे, उस बच्चे को जो डिवोटी होता उसको किडनैप कर लेते, किडनैप करते थे, उसको खूब पिटाई करते थे, कुछ खाने को नहीं देते थे, मुंह में बर्फ भर के उसको बंद कर देते पड़ते थे, तरह तरह से उसको टॉर्चर करते थे, उसके कंठी माला तोड़ दी, माला फेंक दी, प्रभुपाद के चित्रों को फाड़ दिया, गालियां दी, तरह तरह से उनको टॉर्चर दिया, खाने को कुछ नहीं दिया, सोने को कुछ नहीं दिया, ऐसा टॉर्चर कर करके करके बाद में बिल्कुल हार्ड एक्टर उससे लिखवा लेते थे, हाँ इन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया था और मैं ये कोई जब नहीं करूँगा, डी प्रोग्राम हो गया वापस जाऊँ, ऐसी हालत होती थी। लेकिन वही टी वी थ्रू चल रहा था टेट पैट्रिक का, उसने कई ऐसे करता था धर्मों के लोगों को, कहता कई लोगों मैंने ऐसे डी प्रोग्राम किया है, लेकिन हरे कृष्ण हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है को डी प्रोग्राम करना, कहता था कि क्या इनकी क्या ब्रेन वॉश करूँ, क्या वो ब्रेन ही नहीं होगा। और अच्छा क्या होता था, उसका कहना था कि मैंने कई डी प्रोग्राम किया भी है लेकिन पता नहीं क्या होता है, वो दोबारा से भक्त बन जाते हैं, क्योंकि वो समझता नहीं है ये क्या केमिस्ट्री चल रही है, कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को भूलते नहीं है, भगवान हर कदम पर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या होता था, वो जो डी प्रोग्राम कर देते थे उसके बाद वो बेचारे घूम लेते थे भक्त ऐसे, कई सड़कों पे उनको कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया, उन्होंने दिखाया कृष्ण को, देखते हुए याद आ गई, बोले मैं जाना है मंदिर दोबारा ले जाओ, ऐसे होता है। अभी हमारे यहाँ पे एक भक्त थे, अच्छे ढंग से भक्ति कर रहे थे, बहुत उन्नत को अच्छे ढंग से तेजी से प्रोग्रेस कर रहे थे, उनके पिताजी ने पता क्या किया उनको तांत्रिक से मिला दिया, तांत्रिक ने उल्टा सीधा जादू टोना किया, उसको इतना टॉर्चर किया, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। देखिए ये इस हालत तक लोग गिर जाते हैं। हिरण्यकश्यपु आजकल भी उपलब्ध है, मिनी हिरण्यकश्यपु, वो हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली था, छोटे से कुछ भी इनकी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कितना टॉर्चर करता है, फिर भी देखिए भगवान कैसे रक्षा करते हैं, सब भुला दिया उसी कंठी चेंटी से, माला चेंटी भोला कहीं खाने दिया, उल्टा सीधा प्यार से लड़की खिलाया, कुछ मीट खिलाया, पूरे सारे नियम तोड़वा दिए इसके, फिर वो नौकरी करने दोबारा से आया, फिर क्या हुआ, ऐसी कंपनी में चले गए, हम सारे भक्ति भागते हैं, भगवान थोड़ी छोड़ेंगे ऐसे, कौन पे कभी जाना ही नाम है भक्त का प्रणश, एक उनकी पुत्र ऐलान कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। ये भक्ति योग है, कृष्णा कॉन्शियसनेस टॉप मोस्ट योगा प्रोसेस, ये योग है, एक बार ये भगवान से जुड़ गए भगवान नहीं छोड़ गए, हम जितना बड़ी प्रयास कर लें, जितना बड़ी प्रयास कर लें। ये तो वो हो गया कि बाहर की दुनिया की परिस्थितियों से उसको अलग कर दिया, कुछ लोग भक्त लोग भक्ति करने के बाद खुद विचलित हो जाते हैं, इंद्रियों से आकर्षित हो जाते हैं, प्रोसेस को छोड़ देते हैं, क्या तब भगवान उसको छोड़ देंगे, नहीं तब भी नहीं छोड़ते, अगर वो इंद्रियों करने जा रहा है तो भगवान एश्योर करते हैं कि ऐसा इसको समझ सिखाऊंगा बिल्कुल बाकी लोग शराब पी लेंगे, पिक्चर देख लेंगे, व्यभिचार कर लेंगे, आनंद उठा लेंगे, जब तक भक्ति करने का प्रयास करता है उसको ऐसे थप्पड़ पड़ते हैं, ऐसे थप्पड़ पड़ते हैं, वो नहीं कर पाते, या तो इसी जन्म में तुरंत लौट के आएगा भगवान के चरणों को पकड़ेगा, या फिर अगले जन्म में आएगा, भगवान छोड़ते नहीं है किसी भक्त को। एक बार हमने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
जबरदस्ती
करनी है, भगवान नहीं करेंगे, क्योंकि असली इंद्र तीर्थ तो भगवान के धाम में है, यहाँ तो इंद्र तीर्थ का केवल झूठा प्रयास होता है। अगर इंद्रिया तीर्थ हो गए तो हम आनंद में आने दे, आनंद कैसे मिलेगा जब इंद्रिया तीर्थ होंगे, बिना इंद्रिया तीर्थ हुए आनंद थोड़ी मिल सकता है। भगवान का नाम है गोविंद जो हमारी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, तो केवल कृष्ण सेवा में ही गोलोक धाम में ही इंद्रिया तृप्त हो सकती है, वैसे इंद्रिया तृप्त हो ही नहीं सकती, इसलिए हमें भगवान की योजना के अनुसार चलना चाहिए। तो ये प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद है, इससे बहुत सी हमें शिक्षाएं मिलती है। सबसे पहली शिक्षा कि प्रहलाद महाराज पर इतने संकट आए लेकिन फिर भी वो भगवान का मनन करते रहे। जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आती है हम कहते हैं समस्या अल्ट्रा बिग है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है कि अब हमारा भक्ति करना जप करना लगभग संभव नहीं है। और हम भगवान को बताते हैं राधिका रमन जी आप तो जानते हैं मेरी स्थिति क्या है, आप तो सबके हृदय में रहते हैं, इतनी बड़ी समस्या के साथ में कैसे उसका मंगल आरती आ सकता हूँ, कैसे जप कर सकता हूँ, उसका सारा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है अच्छे अच्छे भक्तों का, और बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम सेटल कर लूँ अब आपके हाथ में है, मैं जो करूँगा फिर बाद में करूँगा, भगवान को बोलते हैं जस्ट वेट प्रॉब्लम सेटल कर लूँ। लेकिन यहाँ प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं कर रहे, प्रहलाद महाराज हर परिस्थिति में भगवान को याद कर रहे हैं। गीता के 18वें अध्याय के 58 श्लोक, मत चित्ता सर्वदुर्गाणी मत प्रसाद करिष्यसि, मत चिंता, अगर अपनी चेतना को मुझ में लगाओगे सर्व दुर्गाणी बड़ी से बड़ी समस्या का दुर्गम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को मत प्रसादा मेरी कृपा से करिष्यसि पार कर जाओगे। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए सबसे पहले हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए, सबसे पहले हमें अपना ध्यान भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। समाशिता ये पद पलम नवम महत पदम पुण्य यशे मुरारे, भगवान बोली बस पदम परम पदम मदन पदम या द्विपदम न देशा, भगवान के चरण कमल बताए गए हैं जैसे कोमल के बड्स क्या बोलेंगे कली इतने कोमल होते हैं, और ये कोमल पांव भगवान के एक नाव के समान है, और भगवान के पांव में महत पदम पूरी पूरी भौतिक सृष्टि भगवान के पदम भगवान के चरण कमलों में है। भगवान बोली बस पदम ये जो भव सागर जिसको कोई पार करना कितना दुर्गम है वो क्या बन जाता है वत्स पदम, गाय का जो बच्चा है छोटा बच्चा वत्स गोखुर उसके चरणों का कितना साइज होता है उतना बन जाता है। और फिर परम पदम हम किसको प्राप्त करते हैं भगवान के लिए, हमको जहां पे पग पग पे कोई समस्या नहीं तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी कोई जीवन में समस्या है सबसे पहले हम भगवान के चरणों की शरण में हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
हरे। हम क्या करते हैं हम कृष्ण को बताते हैं राधा रानी का लोग बताते हैं कि जीवन की समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि हमें समस्या को बताना चाहिए कि कृष्ण उनसे भी ज्यादा बड़े हैं, कृष्ण असंभव है, कृष्ण के आगे कोई समस्या टिक नहीं सकती, तो मुझे क्या करना है भगवान की शरण लेना है। तो हम ऐसा करेंगे तो जो समस्या है बहुत छोटी हो जाएगी, और हमें भगवान अंदर से इंस्पिरेशन देंगे या फिर भक्तों से कोई परामर्श मिलेगा कि हम इस समस्या को बहुत आसानी से पार कर पाएंगे। और जब जितनी बड़ी हमारे जीवन में समस्या आएगी उतना बड़ा हमें अवसर प्राप्त होगा ये जानने के लिए कृष्ण कितने महान है। जब समस्याएं आती हैं तब समय है परीक्षा की घड़ी है कि हम जो सिद्धांत हमने सुना है पढ़ा है सीखा है उसको अपने जीवन में उतारे, क्योंकि जब तक इस सिद्धांत को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे इसका कोई साक्षात्कार नहीं होगा, और जब तक साक्षात्कार नहीं होगा कृष्ण के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा, अन्यथा सब बातें केवल थ्योरेटिकल स्टेज पे रह जाती हैं। इसलिए जीवन में समस्याएं आना एक भगवान की कृपा का एक लक्षण है कि भगवान चाहते हैं मौका दे रहे हैं आप इस सिद्धांत को जो हमने सुना है पढ़ा है अपने जीवन में उतारे, समस्याएं बहुत छोटी हो जाएंगी। याद करें भवान बोधि वत्स पदम इतना बड़ा महासागर इतना सब हो जाएगा, और वैसे तो उसको क्रॉस करने के लिए नाव की आवश्यकता है ही नहीं, इतनी सी चीज को नाव के नाव से थोड़ी पार करेंगे आप अपने आप ही पार कर लेंगे। तो ये भगवान की जब भी कोई हमारे जीवन में समस्या आए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा जो ध्यान है उसको और बढ़ाना चाहिए। समस्या छोटी हो जाएगी और भगवान की महानता हमें और विकसित दिखाई देगी, हमारे हृदय में भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ेगा। दूसरा, हम इस प्रसंग से ये सीख सकते हैं कि हर व्यक्ति संसार में सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा चाहने के लिए हम लोग अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों सामग्रियों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि संसार की प्रकृति ऐसी है कि लोग जब समय आता है तो लोग पलट जाते हैं, हमारे सगे संबंधी हमारे मित्र पलट जाएंगे। जैसा हम सोचते हैं कि व्यक्ति व्यवहार करेगा वैसा व्यवहार नहीं करेगा। हुआ किसी के साथ ऐसा जिससे हम आशा रखते हैं अरे ऐसा करेगा, लेकिन मालूम नहीं मेरा व्यक्ति ऐसा करेगा, ऐसा व्यवहार नहीं करता, कितना दुख होता है। या परिस्थितियां बदल जाती है बिल्कुल, मार्केट में रिसेशन आ गया, शेयर मार्केट गिर गई, मेट्रो वाले आए जो हमने प्लॉट लिया था सारा सारा मेट्रो आ गया, चलो सरकार को दे दो, सारी की सारी योजना ऐसी हो जाती है। या फिर हमारा शरीर और मन हमारे साथ कॉपरेट नहीं करता, परिस्थितियां आती है ना ऐसे। तो ये तीन परिस्थितियां क्या है, जब लोग पलट जाते हैं तो वो हुआ अधिभौतिक द्वेष, जब परिस्थितियां बदल जाती है वो क्या हुआ अधिदैविक द्वेष, हमारा मन और शरीर हमसे कॉपरेट नहीं करते, ये क्या हुआ अध्यात्मिक द्वेष। ये नाम हम ऐसे बोलते रहते हैं हमें कितना सताते हैं, कितने हम से पीड़ित हो जाते हैं। और जब व्यक्ति इन चीजों से या किसी एक से पीड़ित होता है वो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि जैसे उसको लगता है सब लोग उसके अगेंस्ट हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, और जैसे होता है छुई हुई पौधा होता है, कोई उसको छू दे बस गरजेगा, सब बेकार है, सब भगवान को मिल जाता है, भक्तों को मिल जाता है, सिद्धांत को मिल जाता है, बहुत ही परिस्थितियों से हम इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो गलती कहाँ हो रही है, गलती ये हो रही है कि मैं बाहरी तरीके से एक सुरक्षा ढूंढ रहा हूं, जबकि सुरक्षा मिलनी चाहिए भगवान के चरणों में आंतरिक रूप से, ये असली सुरक्षा है। जैसे बोलेगा परे ब्रह्मणी, भगवान दिव्य है और प्रहलाद महाराज ने पूर्ण रूप से भगवान के चरणों की शरण ले रखी है, तो असली जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, असली जो सुरक्षा है वो भगवान के चरणों में। एक बार जब भगवान के चरण में शरण ले लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियों में जितने मर्जी बदलाव आ जाए, लोग पलट जाए, हमारा शरीर खराब हो जाए या फिर परिस्थितियां बदल जाए, हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। राजा चित्रकेतु भगवान के दर्शन करके अपने विमान में घूम रहे थे, उन्होंने देखा शिव जी की गोद पे पार्वती बैठी है, उन्होंने उनका कोई अपराध नहीं किया, व्यंग कर दिया, वाह क्या बात है, ऐसे व्यंग किया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि माता पार्वती को श्राप दे देंगी कि जाओ असुर बन जाओ, एकदम पलट के एकदम ऐसा व्यवहार जो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, आशा भी नहीं थी। राजा चित्रकेतु ने क्या किया, उसको चुपचाप स्वीकार कर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, क्यों, पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में आश्रित थे। श्रीला प्रभुपाद जब बॉम्बे स्ट्रीट में थे तो एक हिप्पी था डेविड नाम, प्रभुपाद उसे बहुत उम्मीद हो गई, प्रभुपाद अपने गुरु भाई को चिट्ठी लिखा, आप एक ऐसा हिप्पी मिल गया है जो बहुत सिंसियर है, ये यहाँ का पहला ब्राह्मण बनेगा। प्रभुपाद की उम्मीद थी, जब आप वापिस गए और डेविड पागल हो गया, प्रभुपाद उसे आक्रमण शुरू कर दिया, सामान एकदम फेंकना शुरू कर दिया और रात को 1:30 बजे प्रभुपाद को घर छोड़ना पड़ा, होकर एकदम सड़क पे खड़े, जिस व्यक्ति से उम्मीद थी बिल्कुल पलट गया, प्रभुपाद विचलित नहीं हुए। ये है हमारा इंटरनल सपोर्ट सिस्टम, पूर्ण रूप से भक्तों पर और भगवान पर निर्भर है। तो ऐसे अति भौतिक तरीके से अध्यात्मिक या अध्यात्मिक क्लेश आएंगे भी तो हम पिछले नहीं होंगे। तो यानी कि इस बात ये नहीं है कि बाहरी परिस्थितियों से हम बिल्कुल इनसेंसिटिव रहें, जो होता है होने दें, नहीं, हम जो बाहर के वातावरण में भौतिक परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, जो कुछ इनमें जो बदलाव आता है कोई रोक नहीं सकता, इसको अपने तरीके से जो हम कर सकते हैं डील कर सकते हैं उससे करें, और साथ ही साथ भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से निर्भर रहे, क्योंकि हम सब के जीवन में परिस्थितियां आती हैं उससे हम अपने जीवन के लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। तो ये दूसरी शिक्षा हम इसे सीख सकते हैं। तीसरा, हम देख सकते हैं कि प्रहलाद महाराज कितने बहादुर थे और कितने विनम्र थे, भक्तों को सत्य बोलते हुए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज कुछ भी बोलते थे हिरण कश्यप के सामने, यस बाबा यस प्रज्ञा सीता जॉनी जॉनी यस बाबा, कुछ भी सुना रहे थे, अच्छी सी कविता भी सुना रहे थे, प्रहलाद भी खुश वो भी खुश और अंदर तो चुपचाप भक्ति करते रहते। प्रहलाद महाराज साफ साफ बोलते हैं मती न कृष्ण पर तो सत्या ना देवी तो सावती ही कृष्ण शरणम विष्णु शरणम कीर्तनम स्वर्णम विष्णु सब कुछ बताते हैं बोल्ड वेरी बोल्ड और साथ में बहुत समय से बड़े प्रेम से उन्होंने कोई हिरण्य कश्यप का अपमान नहीं किया। वो बोला असुवीर आप तो असुर में श्रेष्ठ है बिल्कुल। तो इसी ढंग से भक्तों को सत्य बोलते हुए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जब अमेरिका में गए शरण को बोला अपनी वेशभूषा बदलो है ना छुरी कांटे सिखाना शुरू करो ऐसे कौन आपको एक्सेप्ट करेगा। प्रभुपाद ने कहा मैं तो सीखने नहीं हूँ सिखाने आया हूँ, मैं उनसे लेने नहीं उनको देने आया हूँ। इसी ढंग से हमें सत्य बोलते हुए घबराना नहीं चाहिए और सत्य बोलते हुए जो मुझे तकलीफ उसको सहना ही असली गुना मिलता है। ये पाकिस्तान सेंट्रल महाराज कहते हैं जो सत्य बोलते हुए सत्य बोलने के लिए संघर्ष ना करे संघर्ष से बचे कि कौन नफरे में पड़ेगा चलो किसी ढंग से डाल दो सत्य ना बोले सत्य का सामना ना करे वो भी नम्रता नहीं है। असली नम्रता वही है कि सत्य बोलने के लिए संघर्ष का सामना। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि ये प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद है और वैसे मैं कहीं मेरे को चर्चा की है जो भागवतम है ये केस स्टडीज है ना। तो जो प्रहलाद महाराज अपने आचरण से सिखा रहे हैं किस ढंग से अपने जीवन में धर्म का पालन कर रहे हैं उसी ढंग से हमें भी अपने जीवन में क्योंकि हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आते हैं और अपने ही संबंधी प्रहलाद महाराज के अपने ही पिता उनको तंग कर रहे हैं। कोई बाहर का व्यक्ति हमें तंग करे तो इतनी दिक्कत नहीं होती। कई बार हमारे मुख्य स्टूडेंट भक्त लोग जाते हैं बैंक पे कई भक्तों को थप्पड़ मार लो शराब पी हुई है उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खुलवाया खिड़की खुलवाई उन्होंने थप्पड़ मार दिया तो भक्तों ने उसको सह लिया और अच्छा यहाँ आगे बताया किसी भक्त ने बया कर दिया वहाँ मेरे फैला था सबको सह के आ गया तो उसका जो थप्पड़ मारा वो तो सहन कर लिया इस भक्त जो मजाक किया वो सहन नहीं। अपना कोई व्यक्ति थोड़ा सा ही बोल दे उसके जो वाणी है वो तीखे तीरों की तरह चुभती रहती है। अपना कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बोले तो वो सहन नहीं होता। प्रहलाद महाराज के अपने ही पिताओं को तंग कर रहे हैं लेकिन फिर प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वहां के व्यक्ति हमें थप्पड़ भी मार जाए कोई दिक्कत नहीं है। अपना व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ करके क्योंकि हमसे आशा रखते हैं। प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से आशा किस पे रख रहे हैं कृष्ण से। आशा बंद भाव भक्ति का एक लक्ष्य है कि निश्चित रूप से लक्ष्यस्ते इति विश्वासो निश्चित रूप से भगवान मेरी रक्षा करेंगे। हम लोगों क्या प्लान होते हैं निश्चित रूप से जो मेरी योजना है वो सफल होगी। भगवान के बारे में विश्वास कम होता है अपनी योजनाओं पर अपने सगे संबंधियों में ज्यादा विश्वास होता है। लक्ष्य विश्वास गो पित्व वर्णन तथा कि महान निश्चित से पालन करेंगे तो ये परिस्थिति में हमें आने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों के लिए कोई भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। भक्त लोग हर परिस्थिति में क्या करना है भगवान का स्मरण करना है बस। और आगे रोना भी पड़े तो भगवान के सामने रोए
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
वैसे तो इस भौतिक जगत में हर कोई हो रहा है हर कोई हो रहा है। माया देवी का एक नाम है रुद्राणी रुद्राणी रुद्र है कृष्ण शिव उनकी पत्नी भार्या और रुद्राणी का अर्थ है जो हमेशा सबको रुलाती रहे। इसलिए हम देखेंगे चाहे हम दिल्ली में हैं गाजियाबाद में हैं न्यूयॉर्क में जापान में कनाडा में हर कोई करते हो रहे हैं उसकी पुकार को सुनते हैं। कभी शिला लोग बात करते हैं कैसे रोना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा मां के लिए चिल्लाता है। तो ये हमारे में गुण तब विकसित होंगे जब भक्ति की प्रक्रियाओं को भक्ति क्रियाओं को बहुत गंभीरता से करेंगे, भक्ति को सुपरफिशियली करेंगे तो ऊपर ऊपर रहेंगे तो ऊपर की परिस्थितियां हमें विशेष कर देंगे, लेकिन भक्ति के सागर में डूब जाएंगे तो बाहर जो मर्जी हो जाए भौतिक जगत में हम उससे विचलित नहीं होंगे। प्रहलाद महाराज युक्त आत्मनी थे, पूर्ण रूप से मग्न थे, हमेशा भगवान की सेवा में भगवान की चिंता में रहते थे। हिरण्य कश्यप ने जो मर्जी कर ले आगे बताएंगे क्या क्या नहीं किया हिरण्य कश्यप ने, प्रहलाद महाराज बिल्कुल विचलित नहीं, जो वही भगवान का स्मरण कर रहे हैं। हम भी इस परिस्थिति को ला सकते हैं, श्रील प्रभुपाद इसके उदाहरण है, अंतिम अवस्था तक वो भावतक को ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे। लंदन में जब प्रभुपाद 1977 में भक्तों ने बोले हाँ उत्सव आपको आना पड़ेगा, प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के लंदन में गए, नहीं मेरे भक्त भाई बुला रहे हैं, लोग उनको उठा के गए एयरपोर्ट में पालकी में, वहां से फिर ले गए, वहां जाके प्रभुपाद की हालत इतनी खराब हो गई, एक ऑपरेशन भी करना पड़ा, फिर प्रभुपाद बोले हमें वापस वृंदावन ले चलो समय आने वाला है। यानी अंतिम अवस्था तक प्रभुपाद बोलते हैं अगर प्रचार करने के लिए मैं श्री को छोड़ना चाहता हूँ, जिस तरह से युद्ध भूमि में अगर एक सैनिक का सर भी कट जाए तभी वो तलवार घुमाता घुमाता घुमाते घुमाते एक सर काट के जाता है, ये है इस ढंग से छोड़ना चाहता हूँ। पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में रक्त, इसी ढंग से हम भी इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं अगर हम ध्यान पूर्वक गंभीरता से जप करें, गंभीरता से अध्ययन करें, गंभीरता से श्रवण करें, भक्तों के संग को गंभीरता से ले, तो सारे के सारे गुण हमारे में विकसित हो जाएंगे। हरे कृष्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय।